अध्याय 7 पृष्ठ संख्या 111 संगीत की संस्थागत शिक्षण प्रणाली की उपलब्धियां, न्यूनताएं एवं समाधान। उपलब्धियां। इस शोध प्रबंध के प्रारंभिक अध्यायों में हमने देखा कि किस प्रकार आधुनिक युग की आवश्यकता के अनुरूप संगीत शिक्षण को गुरु शिष्य परंपरा के रहते हुए भी संगीत के संस्थागत शिक्षण का प्रचलन बढ़ा तथा धीरे धीरे संपूर्ण देश में व्याप्त हो गया। इस शिक्षण पद्धति के लोकप्रिय होने के मुख्य कारण इसकी सर्वजन सुलभता ही है। गुरु शिष्य परंपरा में जिस संगीत को लोग अत्यधिक कठिनाई सहने के उपरांत भी ठीक से नहीं सीख पाते थे, वे उसे संस्थाओं के माध्यम से आसानी से प्राप्त करने लगे। प्राचीन काल में भी संगीत की शिक्षा दी जाती थी। उस समय भी संगीत की शालाएं होती थीं, जिनमें एक गुरु अपने कुछ गिने हुए शिष्यों को वेद मंत्रों का तथा संगीत कला का शिक्षण प्रदान करते थे। धीरे धीरे यही संगीत देश में चारों तरफ बढ़ा तथा गुरु शिष्य परंपरा के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद कुछ समय बदला और संगीत की प्राचीन शिक्षण पद्धति घरानों से जुड़ गई। यह जो पीढ़ी दर पीढ़ी संगीत में निरंतरता चली आ रही है, वह इसी घरानेदार तालीम की ही देन कही जा सकती है। किंतु घरानेदार संगीत परंपरा कुछ ही विद्यार्थियों के लिए ही सुलभ हो पाती थी, किंतु संगीत को सर्वजन सुलभ बनाने के लिए संगीत में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे एवं पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जैसे महान संगीतज्ञों के समाज में आने पर यह कठिन कार्य सहज ही पूरे समाज में जाल की तरह फैल गया और सभी के लिए कम खर्च और कम समय में अपना संगीत सीखने को मिलने लगा। यह उपलब्धि संगीत संस्थाओं के माध्यम से ही संभव है। संगीत के संस्थागत शिक्षण के प्रचार में आने के समय से आज तक असंख्य विद्यार्थियों ने अपनी अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुसार ही संगीत शिक्षा प्राप्त कर इस विषय के प्रति समाज में एक जागरूकता एवं आदर उत्पन्न किया। संस्थागत शिक्षण के प्रचलन के समय संगीतज्ञों को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता था। संगीत का व्यवसाय करने वाले व्यक्ति प्रायः अशिक्षित ही होते थे और समाज के ऐसे वर्ग से आते थे जिसे आदर प्राप्त नहीं होता था। गाने बजाने या नृत्य करने वाले व्यक्ति अपनी कला के लिए तो प्रशंसा प्राप्त करते थे, परंतु समाज में उनका स्थान असम्मानजनक था। संगीत संस्थाओं की स्थापना पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी एवं पंडित भातखंडे जी के अथक प्रयत्नों के कारण सद्गृहस्थ परिवारों से भी संगीत शिक्षा में रुचि लेने वाले विद्यार्थियों का आने लगना संगीत के संस्थागत शिक्षण की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कही जा सकती है। पृष्ठ संख्या 112। यह कहना अनुचित न होगा कि आज पूरे देश में संगीत से संबंधित विभिन्न क्षेत्र जैसे शिक्षण, प्रदर्शन, लेखन, समालोचना, प्रशासन आदि सभी में संगीत संस्थाओं से शिक्षण प्राप्त अधिकांश विद्यार्थी ही उत्तरदायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वाह कर रहे हैं। संगीत शिक्षण का एक निर्धारित क्रम अपनाने से इसमें व्याप्त अनियमितता तथा मनमौजीपन पर अंकुश लगा। संस्थागत शिक्षण का यह प्रयोजन विगत वर्षों में बहुत कुछ सिद्ध भी हुआ है। संगीत के संस्थागत शिक्षण की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह भी है कि इसके अंतर्गत संगीत शिक्षण की वैज्ञानिक पद्धतियों का भी विकास हुआ तथा क्रियात्मक के साथ साथ शास्त्र पक्ष का सामंजस्य स्थापित करने के प्रयत्न किए जाने लगे। जैसा पूर्व में भी कहा जा चुका है, अपने देश में मुसलमानों के आगमन के समय से क्रिया और शास्त्र का संबंध टूटता चला जा रहा था। अंग्रेजों के समय तक यह अंतर बहुत अधिक बढ़ गया था। संस्थागत संगीत शिक्षण प्रारंभ होने के समय से क्रिया के अनुरूप शास्त्र और शास्त्र के अनुरूप क्रिया रहने की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा तथा इस दिशा में ठोस कार्य भी किया गया। संगीत के संस्थागत शिक्षण में उपेक्षित शास्त्र पक्ष के महत्व को समझा गया तथा उसे पाठ्यक्रमों में एक निश्चित स्थान प्रदान किया गया। इसके परिणाम स्वरूप संगीत में शोध कार्य की प्रवृत्ति बढ़ी तथा इसके वैज्ञानिक पक्ष का भी अध्ययन किया जाने लगा। आज संगीत के शोध क्षेत्र में जो भी जागरूकता देखी जा रही है, वह संगीत के संस्थागत शिक्षण के प्रचार के ही परिणाम स्वरूप है। संगीत की संस्थागत शिक्षण प्रणाली की न्यूनताएं। संगीत की संस्थागत शिक्षण प्रणाली की उपलब्धियों के उपरांत भी, जैसा कि इससे पूर्व भी देखा जा चुका है, आज भी इस शिक्षण प्रणाली में अनेक कमियां अनुभव की जा सकती हैं। इस प्रणाली में गुणवत्ता की अपेक्षा संख्यात्मकता को ही अधिक महत्व प्राप्त हुआ है। संगीत संस्थाएं अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रतिभाहीन अयोग्य विद्यार्थियों को भी प्रवेश देती रहती हैं, जिसका दुष्प्रभाव यह होता है कि योग्य विद्यार्थियों को ठीक से सीखने को नहीं मिलता तथा पाठ्यक्रमों का स्तर नीचे गिरता रहता है। पृष्ठ संख्या 113। अधिकांश छोटी छोटी संगीत संस्थाएं जीविकोपार्जन की दृष्टि से ही प्रारंभ की जाती हैं। संगीत के प्रति उनका समर्पण बहुत कम रहता है। संगीत संस्थाओं में उत्तीर्ण हुए व्यक्ति जो संगीत क्षेत्र में एक कलाकार की भांति अपने को स्थापित नहीं कर सकते, शिक्षकीय कार्य लेते हैं तथा असुविधा होने पर संगीत विद्यालय प्रारंभ कर देते हैं। वास्तव में इन्हें संगीत विद्यालय न कहकर पार्ट टाइम कोचिंग क्लास ही कहा जाना अधिक उचित होगा। इस प्रकार की संस्थाओं से सीखकर निकले हुए विद्यार्थियों में कलाकार तो क्या, कभी-कभी संगीत के विद्यार्थियोचित गुणों का भी विकास नहीं होता है। इन संस्थाओं में न तो गहन अध्ययन के पाठ्यक्रम ही रहते हैं और न ही उनके अभ्यास में विद्यार्थियों की रुचि। ऐसे विद्यार्थी विरले ही रहते हैं जो इन संस्थाओं में सीखते हुए अपने व्यक्तिगत अध्ययन एवं अभ्यास के बल पर कुछ कर सकते हों। इन संस्थाओं में प्रचलित पाठ्यक्रमों के प्रतिदिन शिक्षण तथा अल्प समय तथा उन्हें एक निश्चित समय अवधि में समाप्त करने का प्रतिबंध गहन शिक्षण की गुंजाइश ही नहीं छोड़ता। सिखाया गया पाठ विद्यार्थियों द्वारा किस सीमा तक उठाया गया है, इसे भी सोचने का अवकाश शिक्षक को नहीं होता। वर्तमान अधिकांश पाठ्यक्रमों में विद्यार्थी के प्रारंभिक स्वर ज्ञान की मजबूती की ओर दुर्लक्ष किया जा रहा है। विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए स्वर ज्ञान एवं अलंकार अभ्यास के पाठों को निरस समझकर जल्दी ही गीत एवं राग शिक्षण प्रारंभ कर दिया जाता है, जिसके कारण अपरिपक्व स्वर ज्ञान रहते हुए विद्यार्थी गायकी का असफल प्रयास करने लगते हैं। वर्तमान में शिक्षण में कंठ संस्कार विधि के शिक्षण पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। छात्र छात्राओं की मिलीजुली कक्षाओं में छात्राओं के आधार पर स्वर में गाते गाते छात्रों का आधार स्वर भी बिगड़कर छात्राओं के आधार स्वर के समीप आ जाता है तथा इससे अनेक विद्यार्थियों की अच्छी आवाज भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। अनेक प्रमुख संस्थाओं में हिंदुस्तानी संगीत के सभी विषयों के शिक्षण की समुचित व्यवस्था अभी तक नहीं हो सकी है। गायन विषय के अंतर्गत ध्रुपद, ठुमरी, टप्पा, तराना तथा वाद्यों में वीणा, सरोद, बांसुरी, शहनाई, पखावज आदि के पृथक प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा इसके साथ ही कर्नाटक संगीत, रविंद्र संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, पाश्चात्य संगीत आदि के विभाग प्रारंभ किया जाना अभी शेष है। शास्त्रीय नृत्य की सभी प्रमुख विधाओं के शिक्षण का प्रबंध भी अभी तक नहीं किया जा सका है। अधिकांश संगीत संस्थाओं में उत्तर भारत में सर्वाधिक प्रचलित कथक नृत्य के शिक्षण की व्यवस्था भी नहीं हो पाई है। संगीत को सर्वजन सुलभ बनाने के उत्साह में विद्यार्थियों की रुचि एवं शक्ति के भेद के अनुसार भिन्न पाठ्यक्रमों का पूर्ण विकास अभी भी नहीं हुआ है। संगीत के शास्त्रीय पाठ्यक्रम एवं जनसाधारण की रुचि को परिष्कृत करने हेतु संगीत श्रवण के अल्पकालिक पाठ्यक्रमों का प्रारंभ अभी एक आध संस्थाओं में ही हुआ है। सभी विषयों में स्तरीय पाठ्य पुस्तकें लिखी जाना अवशेष हैं। वाद्य संगीत तथा नृत्य में इनकी आवश्यकता सबसे अधिक है। अधिकांश संगीत संस्थाएं, भवन, वाद्य, पुस्तकालय, श्रवण कक्ष, वैज्ञानिक श्रव्य एवं दृश्य उपकरणों के अभाव में ग्रस्त हैं। इनके शिक्षकों को उचित वेतन या वेतनमान प्राप्त नहीं है, अतः जब तक शिक्षकों के सामने जीविकोपार्जन की समस्या हो, उनसे कार्यकुशलता या कार्यक्षमता की अपेक्षा करना कहाँ तक उचित है। अनेक संपन्न शिक्षण संस्थाओं में आज भी गुरु शिष्य परंपरा के घरानेदार संगीतज्ञों को शिक्षकीय कार्य हेतु प्राथमिकता दी जाती है। ये घरानेदार संगीतज्ञ क्रिया कुशल तो होते हैं, परंतु संस्थागत शिक्षण की आवश्यकताओं से परिचित न होने के कारण प्रायः विधिवत शिक्षण प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। आज गंभीर रूप से यह भी विचारणीय प्रश्न है कि संस्थागत व्यक्ति निरपेक्ष शिक्षण की नियमितता और व्यक्तिनिष्ठ स्वतंत्र शिक्षण की सृजनशीलता और संवेदनशीलता, इन दोनों का समन्वय क्या असंभव है। शिक्षण के वास्तविक धरातल पर आकर देखें, यानी यथार्थ पर विचार करें, तो यह स्वीकार करना होगा कि शिक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में व्यक्ति की वास्तविक सत्ता है। पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, परीक्षा प्रणाली में जब कार्यान्वित नहीं होती है तो व्यक्ति के द्वारा ही होती है। उनका निर्धारण भले ही व्यक्ति निरपेक्ष हो, किंतु उनकी सफलता अथवा विफलता व्यक्ति पर ही निर्भर है। इसलिए पाठ्यक्रम आदि के निर्धारण में जितनी सूझबूझ और व्यापक दृष्टि की आवश्यकता है, उससे कहीं अधिक जागरूकता और संवेदनशीलता यथार्थ के धरातल पर उससे कार्यान्वयन में आवश्यक है, और यथार्थ में व्यक्ति ही एकमात्र सत्य है। इसलिए यहाँ इस बात पर बल देना चाहती हूँ कि संगीत शिक्षण की संस्थाओं की व्यवस्था जिसके हाथ में है, वे जब तक संगीत सृजनशीलता को अवकाश नहीं देंगे, तब तक संस्थागत शिक्षण में जीवन रस का पनपना संभव नहीं है। पृष्ठ संख्या 115। यह निश्चित है कि इस शिक्षण प्रणाली में शिक्षक कलाकारों की सृजनशीलता की हानि होती है। अच्छे बुरे सभी प्रकार के विद्यार्थियों को सिखाने में शिक्षक अपनी नई कल्पनाओं का सृजनशीलता का प्रयोग नहीं कर पाता। उसकी कल्पना शक्ति कुंठित हो जाती है। कलाकार प्रवृत्ति का शिक्षक नित्य नई कल्पनाएं करता है तथा वह चाहता है उसके विद्यार्थी उसकी कल्पनाओं को ग्रहण कर सकें। विद्यार्थी यदि प्रतिभा संपन्न एवं ग्रहणशील हैं, तब तो शिक्षक की इन कल्पनाओं को तुरंत उठाना चाहेगा, परंतु यदि उसमें ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं है तो शिक्षक को निराशा ही हाथ लगेगी। ऐसे कमजोर विद्यार्थी शिक्षक की सृजनात्मकता शक्ति को नष्ट कर देते हैं। शिक्षक कलाकार पूर्व निश्चित पाठ्यक्रम एवं उन्हें समाप्त करने की समयावधि से भी प्रतिबंधित नहीं होना चाहता। वह चाहता है कि प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता को देखकर उसका पाठ्यक्रम एवं उसे सीखने की समयावधि वह स्वयं निश्चित करे, परंतु शिक्षण संस्थाओं में ऐसा करना संभव नहीं होता। संस्थाओं में पूर्ण निश्चित पाठ्यक्रमों को प्रतिवर्ष सभी प्रकार के विद्यार्थियों को एक समान सीखना पड़ता है, अतः कलाकार प्रवृत्ति का शिक्षक ऐसे कसे बंधे शिक्षण में रुचि लेना समाप्त कर देता है। वर्तमान पाठ्यक्रमों का लक्ष्य विद्यार्थियों को संगीत का रूढ़िवादी ज्ञान प्रदान करना है, उसका कला बोध नहीं। रागों की संख्या, सरगम, लक्षण गीत, ख्याल, ध्रुपद, धमार, तराना, आलाप, तान, शास्त्रीय पाठ इत्यादि से विद्यार्थियों को संगीत का ज्ञान प्रदान किया जाता है। यही नहीं, गीतों का शिक्षण पुस्तक में दी हुई स्वरलिपि के अनुसार तथा रागों का चयन भी किसी मत या ग्रंथ विशेष के अनुसार जब तक इन शिक्षक कलाकारों को प्रदान करना पड़ता है, तब से असहाय होकर यह सब करने को मजबूर हो जाते हैं।